ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की तिर्यंची गति एवं मनुष्य गति के संगी पंचेंद्री जीव तिर्यंच की अपेक्षा से संगी और असंगी पंचेंद्री जीव पूर्व कर्म के उदय से जो सवनन प्राप्त होता है उस सवनन के आधार से देव गति एवं नरक गति प्राप्त होती देव गति में असंगी पंचेंद्री जीव यदि जाता है तो कहाँ तक जा सकता है भवनत्रिक में जाएगा इससे ज़्यादा नहीं असंगी पंचेंद्री जीव त्रिंच स्वर्ग में कभी भी जन्म नहीं लिए न ले सकते नरक गति में प्रथम नरक से नीचे नहीं गए अनादिकाल से कोई भी असंगी पंचेंद्री जीव नरक गति में प्रथम नरक से नीचे नहीं गए नरक से प्रथम नरक तक और देव गति में भवनत्रिक तक और इनका सहनन कौन सा होता है छठा यदि संगी पंचेंद्री जीव होता और छठा सवनन होता तो देव गति में कहाँ तक जा सकता आठवीं स्वर्ग तक और नरक गति में कहाँ तक जा सकता तीसरे नरक तक देखो कितना फर्क पड़ गया नरक में तीसरे नरक तक जा रहा है और देव गति में आठवीं स्वर्ग तक जा रहा है ये किसका प्रभाव है ये संगी पंचेंद्री होकर मन को प्राप्त करके जी रहा है मन का प्रभाव है यह मन नहीं होता तो भवनत्रिक में जाना पड़ता नरक में प्रथम नरक तक जाना पड़ता तीसरे नरक तक जाने की शक्ति आ गई इस शक्ति को मन संबंधित शक्ति कहना चाहिए सवनन तो है ही छठा सवनन है उसकी शक्ति तो होती ही है परंतु मन का प्रभाव द्विइंद्रिय जीव को भी छठा सवनन है तीन इंद्रिय जीव को भी छठा सवनन है चतुरिंद्रिय जीव को भी छठा सवनन है देखो किंतु ये नरक नहीं जा रहे हैं न देवगति में जा रहे हैं द्विइंद्रिय जीव तीनिंद्रिय जीव और चतुरिंद्रिय जीव को नियम से कौन सा सनन होता है छठा सनन होता है लेकिन वे देवगति और नरक गति को प्राप्त नहीं हो सकते क्या कारण है नहीं मन तो है ही नहीं और क्या नहीं कान नहीं पांचवी इंद्री कौन सी है कर्णेन्द्री कर्णेन्द्रिय नहीं है, कर्णेन्द्रिय पांचवी इंद्री, कर्णेन्द्रिय नहीं है। तो देखो कर्णेन्द्रिय एक मिल गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह असंगी न कहलाए, पंचेन्द्रिय असंगी न कहलाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। असंगी तो है ही, पर एक इंद्री कर्णेन्द्रिय एक्स्ट्रा मिल गया तो वह नरक जाने की योग्यता को हासिल कर लिया। यानी कर्ण से, कर्णेन्द्रिय से भी काफी कुछ पाप होता है। यानी कम से कम हम प्रथम नरक तक और भवनत्रिक में जाने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। तो इंद्रियों को भी प्राण माना है, ये प्राण आत्मा की शक्तियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम हर्ष विषाद करते रहते हैं। अब सोचो स्पर्शेंद्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री, चक्षु इंद्री, चार इंद्रियां मिली, इससे नरक नहीं गया। कर्णेन्द्री एक मिल गया तो वह नरक जाने के योग्यता हासिल कर लिया। नरक जाने वाले को कम से कम कान मिलना ही चाहिए, ये अर्थ हो गया। जिसको सुना ही नहीं देता वो नरक नहीं जाएगा। जिसको सुना ही नहीं देता वो नरक नहीं जाएगा, और जिसको सुनाई देता है वो नरक जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पहले नरक तक जाएगा। मन नहीं मिला है तो, पांच इंद्रियां तो मिल गई लेकिन मन नहीं मिला है तो वह नरक तो जाएगा, प्रथम नरक तक। और मन भी मिल गया तो तीसरे नरक तक जाएगा। छठा सोनन है, तीसरे नरक तक जाएगा। और इसके साथ एक सहनन बढ़ा दो और है? पांचवा कर दो उसको, मन भी मिल गया और पांचवा कर दो, कहां तक जाएगा नरक में है? पांचवे नरक तक जाएगा, पांचवा सहनन वाला पांचवे नरक तक। तीसरा नरक में जा रहा था, पांचवे नरक तक जाने की योग्यता आ गई। तो ये सहनन संबंधी शक्ति है, एक सहनन बढ़ गया तो पांचवें नरक तक जा रहा है। अब स्वर्ग में जाएगा तो बारहवें स्वर्ग तक जाने लगा, आठवें स्वर्ग तक जाता था, अब बारहवें स्वर्ग तक जाने लगा। ये किसके परिणाम से? सहनन के परिणाम से जा रहा है। लेकिन उस सहनन के साथ क्या मन और इंद्रियां काम नहीं करती? अवश्य, सहनन सहयोगी होता है, मन भी सहयोगी, इंद्रियां भी सहयोगी, और जाने वाला आत्मा। आत्मा अपनी शक्ति से जा रहा है, लेकिन अपनी शक्ति को, शक्ति के साथ साथ इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति को साथ लेकर के विशेष रूप से पाप और विशेष रूप से पुण्य कमाने की क्षमता को हासिल कर लेता है। तीन चीजें हैं, आत्मशक्ति, मन शक्ति, इंद्रिय शक्ति। इन तीनों के आधार से वह जाता है। तो सामान्य कथन हो गया था, विशेष कथन में आए थे मुनि महाराज, तेरहवें नंबर का द्रविलिंगी मुनि। द्रविलिंगी किसको कहते हैं? जो बाह्य व्रतों का तो पालन करते हैं, परिग्रह आदि कुछ नहीं रखते, किंतु अभ्यंतर परिग्रह रहते हैं, बाह्य परिग्रह कुछ भी नहीं रहता। दस प्रकार के परिग्रह कुछ भी नहीं है। ये द्रविलिंगी मुनि महाराज कहाँ से, कौन से सहनन वाले, पहले प्रथम सहनन के साथ घटित करेंगे। प्रथम सहनन वाले द्रविलिंगी मुनि महाराज पहले गुण स्थान में या दूसरे गुण स्थान में मरण करते हैं तो भौनत्रिक से लेकर नवग्रेविक तक जा सकते, सर्वार्थ सिद्धि तक नहीं। प्रथम सनन है, सर्वार्थ सिद्धि क्यों नहीं जा रहे? भावलिंगी ही जाते हैं, प्रथम सननधारी भावलिंगी मुनि महाराज ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। नरक में जाएंगे? जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो, इनको पाप का आश्रय होता नहीं, यानी पाप कम होता है। पाप कम होने से नरक नहीं जाते। 14वें नंबर में देखें, मुनि हैं द्रव्यलिंगी, कौन सा सवनन? दूसरा सवनन। स्वर्ग में जाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक? मरण कहाँ हुआ, पहले या दूसरे गुणस्थान में मरण हो सकता है, हो गया तो भवनत्रिक से लेकर नवग्रेविक तक जा सकते हैं, नरक में नहीं जाते। तीसरे सहनन वाले मुनि महाराज पहले दूसरे गुणस्थान में मरण कर नवग्रेविक तक जा सकते हैं। देखो क्या उपयोग हुआ, पहले दूसरे सहनन को प्राप्त करके क्या उपयोग हुआ? नवग्रेविक तक ही जा रहे हैं तीनों। इसकी उपयोगिता तब है जब भावलिंग को प्राप्त करें। तो भावलिंगी मुनि महाराज तीसरे सहनन वाले हो तो कहां तक जाएंगे? भावलिंगी हो तीसरा सहनन हो तो ग्रवेक तक ही जाएंगे, नवग्रवेक, किंतु पहले स्वर्ग से लेकर, ऐसा कहना पड़ता है। भावलिंगी हो तो पहले स्वर्ग से ग्रवेक तक जाएंगे, और दूसरे सहनन वाले भावलिंगी हो तो पहले स्वर्ग से नव अनुदिश तक जा सकते, और प्रथम सहनन वाले भावलिंगी मुनि महाराज हो तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलती 16वां नंबर, चौथे सहनन वाले द्रव्यलिंगी मुनि महाराज कहाँ तक जा सकते हैं? भवनत्रिक से 16वें स्वर्ग तक। द्रव्यलिंग के साथ सर्वत्र भवनत्रिक से ग्रहण करना चाहिए, 16वें स्वर्ग तक। पांचवें सहनन वाले हों तो पहले दूसरे भवनत्रिक से 12वें स्वर्ग तक, ठीक है, पांचवें सहनन से 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। छठे सहनन से 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। अब इसमें विचार करो, मुनि महाराज द्रव्यलिंगी भावलिंगी के गुणस्थान क्या है? भावलिंगी हो तो गुणस्थान क्या बनेगा? 6 के ऊपर, छठे गुणस्थान से ऊपर बनेगा। द्रव्यलिंगी हो तो 5 से नीचे, मतलब द्रव्यलिंगी मुनि महाराज सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। 8वें स्वर्ग तक जाएंगे। अब द्रव्यलिंग के साथ गुणस्थान बदलेंगे, गुणस्थान पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के सौनन से गुणस्थान कौन सा? चौथा या पांचवा। पहले दूसरे तीसरे सहनन वाले चौथे गुणस्थान में या पांचवें गुणस्थान में मरण करते हैं तो स्वर्ग पहले से लेकर नवग्रवेक तक जाएंगे। यहाँ भवनत्रिक कैंसल हो गया, क्या कारण है? हाँ, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव चाहे द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो, वह भवनत्रिक से बचेगा। सम्यक तो बचा रहा है, यहाँ सम्यक दर्शन होने के कारण से वे भवनत्रिक में नहीं जा रहे हैं। 20वां नंबर, चौथे सहनन वाले द्रविलिंगी मुनि महाराज चौथे पांचवे में मरण करके पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ठीक है, चौथे सहनन से तो 16 स्वर्ग बताया ही था ऊपर, कॉमन कथन। पांचवे सहनन वाले द्रविलिंगी मुनि महाराज चौथे पंचम गुणस्थान में मरण कर कहाँ जा सकते हैं? 1 से 12वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, हाँ 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। छठे सहनन वाले द्रविलिंगी मुनि महाराज चौथे पंचम गुणस्थान में मरण कर ये पहले स्वर्ग से 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये द्रविलिंग की अपेक्षा से कथन हो गया स्वर्गों में। अब विशेषार्थ में दिया है, द्रविलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि को देव गति छोड़कर बाकी के 3 गतियों में जन्म नहीं होता, ऐसा नियम है। कौन सी गति में जा सकते? देव गति, केवल देव गति। पहले गुणस्थान में मरण कर रहे हो तो भी देवगति, या पहले से 5वें गुणस्थान तक कहीं भी मरण कर रहे हो देवगति, 3रे गुणस्थान में तो मरण नहीं है उसको छोड़कर। तो द्रविलिंग का भंग हुए बिना नरक नहीं जा सकते, ये समझना चाहिए। यदि नरक में गए तो द्रविलिंग च्युत होकर के गए, और नरक नहीं गए तो या तो भावलिंगी थे या तो द्रविलिंगी थे, ये समझना। 23 नंबर, भावलिंगी मुनि महाराज पहले सौनन से कहां पर मरण हो सकता है इनका? छठे से लेकर 14वें तक मरण के स्थान हैं। छठे से 14वें बीच में 12वें नहीं लेना चाहिए, 13वें नहीं लेना चाहिए, हाँ 12वें 13वें को छोड़कर छठे से लेकर 14वें तक, छठे से 12 और प्रथम स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि या मोक्ष जा सकते हैं, नरक में नहीं जा सकते। भावलिंगी संयमी मुनि का देव गति को छोड़कर बाकी 3 गतियों में जन्म नहीं होता, तथा देव गति में भवनत्रिक में जन्म नहीं होता, ऐसा नियम है। अब सहनन बदल गया, दूसरे सहनन के साथ मरण हो रहा है। तो देखो, पहले सहनन वाले तो छठे से लेकर 11वें तक के किसी भी गुणस्थान में मरण कर सकते हैं, और 14वें में भी मरण कर सकते। 14वें में मरण हो गया तो मोक्ष जाएंगे, और छठे से लेकर 11वें तक कहीं भी मरण हो गया तो नियम से देवगति में ही जन्म होगा। दूसरे सहनन वाले मुनि महाराज छठे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में कहीं भी मरण हो सकता है, किसी एक गुणस्थान में मरण कर ले तो प्रथम स्वर्ग से लेकर 9 अनुदिश तक जा सकते हैं। प्रथम स्वर्ग से लेकर 9 अनुदिश तक नरक नहीं जाते। तीसरे सहनन वाले भावलिंगी मुनि महाराज छठे से ग्यारहवें गुणस्थान तक के किसी गुणस्थान में मरण कर लें तो स्वर्ग प्रथम से लेकर नौ ग्रेविक तक जा सकती है, सुलभ है। छह से ग्यारह व चौदह, हाँ, सर्वार सिद्धि आ गई तो बीच के तो आते ही हैं ऐसा हाँ माने जाएंगे। छब्बीस नंबर, चौथे सनन वाले भावलिंगी मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थान में ही मरण कर सकेंगे, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। क्यों? क्योंकि श्रेणी नहीं चढ़ सकते। श्रेणी चढ़ने के लिए सहनन कौन से चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? ये प्रथम आदि के तीन सहनन वाले ही श्रेणी चढ़ते हैं, चौथे सहनन वाले मुनि श्रेणी नहीं चढ़ते, इसलिए छठे सप्तम गुणस्थान में ही रहेंगे, यहाँ पर ही मरण करेंगे और स्वर्ग में जाएंगे तो एक से सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं, नरक नहीं जाते। पांचवें सहनन वाले मुनि महाराज को भी दो ही गुणस्थान है, छठा सप्तम, ये भी स्वर्ग में जाएंगे तो पहले से बारहवें स्वर्ग तक जा सकेंगे, पांचवा सहनन होने के कारण। छठे सहनन वाले मुनि महाराज छठे सप्तम गुणस्थान में मरण करके पहले स्वर्ग से आठवें स्वर्ग तक जाएंगे। कोई मुनि महाराज पहले सहनन वाले हैं और कोई मुनि महाराज छठे सहनन वाले हैं, तो पहले सहनन वाले मुनि महाराज पहले स्वर्ग में चले गए और छठे सहनन वाले मुनि महाराज भी पहले स्वर्ग में चले गए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो फिर दोनों में क्या अंतर रहेगा? हाँ, प्रथम स्वर्ग में जन्म लेकर के भी आयु में कम ज्यादा आयु हो सकती दोनों को। फर्क हो सकता है, इंद्र सामान्य इसके उपरांत अपन आप चर्चा करेंगे, श्रावक व त्रिरंच गति के त्रिरंच जीवों में कथन। 29वां, द्रव्य अणुवृत्ति श्रावक व त्रिरंच, ये दोनों को एक साथ इसलिए कथन किया है कि दोनों के गुणस्थान में सनन में कोई अंतर नहीं है और उपपाद में भी अंतर नहीं पड़ता, यानी जन्म में भी अंतर नहीं पड़ता, इसलिए एक साथ कथन किया गया है। द्रव्य अणुवृत्ति श्रावक व त्रिरंच पहले सहनन वाले होते हैं तो गुणस्थान चौथे में यदि मरण हुआ तो पहले स्वर्ग से लेकर अधिक से अधिक सोलहवें स्वर्ग तक जाएंगे। गुणस्थान कौन सा मरण का? चौथा। सम्यक दृष्टि है? और कहाँ तक जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? श्रावक भी और त्रिरंच भी, दोनों चौथे गुणस्थान वर्ती सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जैसे एक मेंढक है, वह यदि मेंढक नहीं, वो मत्स्य, राघव मत्स्य है, तो वह पहले सनन वाला हो और चौथा गुणस्थान हो तो वो भी अधिक से अधिक सोलहवें स्वर्ग तक ही जाएगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा। क्यों? सम्यक दृष्टि है इसलिए। 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। द्रव्य अनुवृत्ति श्रावक व तिरिंच 30 नंबर में पढ़ रहे हैं। द्रव्य अनुवृत्ति श्रावक व तिरिंच सौनन प्रथम है, मरण गुणस्थान पहला या दूसरा है। तो भवनत्रिक से 12वें स्वर्ग तक जाती है, ऊपर चौथा गुणस्थान था और व्रत द्रव्य व्रत ही था। द्रव्य व्रत क्यों कहा? सम्यक दृष्टि है तो द्रव्य व्रत क्यों? भाव भाववृत्ति किस गुणस्थान में रहेंगी? फिर भाव अनुवृत्ति पंचम गुणस्थान में। पंचम गुणस्थान का बाह्याचरण है किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय होने से भाव वृत्त का घात हुआ है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय होने से भाव वृत्त का घात हुआ है, इसलिए गुणस्थान चौथा है। अब द्रव्य वृत्त तो है ही, द्रव्य वृत्त होने से और सम्यक दृष्टि होने से यहाँ पर स्वर्ग में ही जा रहा है। इसका कारण सम्यक दृष्टि होने से और देवगति में ही जा रहा है, ये द्रव्यवृत्ति होने से। क्षायिक सम्यक दृष्टि द्रव्यवृत्ति नहीं बन सकेगा। हाँ, द्रव्य अनुवृत्ति नहीं बन सकेगा, वो भाववृत्त भाव अनुवृत्ति बन सकता है, ये हो सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि तिरंच भोग भूमि में बहुत सारे हैं, असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्रों में क्षायिक सम्यक दृष्टि तिरंच भोग भूमि में पाए जाते हैं। वे मरण करके दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं अधिक से अधिक। कर्म भूमि में रहने वाले तिरंच रागव मत्स्यादि और इधर भी बैल आदि को भी बताया। बैल 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। वज्रषभ नारद सनंदारी केवल रागव मत्स्य नहीं होता, बैल आदि भी होते हैं जो चतुर्थ काल के आरंभ में जन्म लेते हैं, उत्कृष्ट सनन वाले तिरंच प्राणी। इसका विशेष कथन नहीं मिलता कौन कौन से तिरंच को चतुर्थ काल में प्रथम सहनन रहता है। यहां की अपेक्षा स्वयंभू रमन समुद्र का वो एक उदाहरण मिलता, विशेष कथन नहीं मिलता, लेकिन रहते हैं। प्राणियों का नाम विशेष रूप से नहीं मिलता। पक्षियों में तीन सहनन माना है अधिक से, तीसरे पृथ्वी तक ही जाते हैं। ये द्रव्यवृत्ति अनुवृत्ति की अपेक्षा से प्रथम सहनन घटित किया। कैसे घटित किया? पहले द्रव्य अनुवृत्ति की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान में अगर मरण हुआ तो प्रथम स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, वे ही प्रथम सहननधारी द्रव्य श्रावक, द्रव्य अनुवृत्ति श्रावक या तिरंच पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करते हैं तो भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है सम्यक्त्व रहित होने पर जीव 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जाता। प्रथम सहनन भले ही हो किंतु सम्यक दर्शन अगर खो गया और द्रव्य अनुवृत्त भी है तो वह श्रावक या तिरंच कहाँ तक जाएंगे? केवल 12वें स्वर्ग तक। किंतु वही श्रावक यदि द्रव्यलिंगी मुनि बन जाए, द्रव्य अनुवृत्ति है द्रव्यलिंगी मुनि बन जाए तो ऊपर गमन हो सकता है, प्रथम सनन है, ऊपर गमन हो सकता है, कहाँ तक, नवे ग्रवेक तक जा सकता है। अगर अनुवृत्ति ही रहेंगे तो बारहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं, मुनि बनेंगे तो ग्रवेक तक जा सकेंगे, अनुवृत्ति रहकर बारहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं उठ सकते। हाँ, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो फिर सोलहवें स्वर्ग तक, भाव अनुवृत्तों को भी धारण कर लें तो सोलहवें स्वर्ग तक, द्रव्य अनुवृत्ति हो या भाव अनुवृत्ति हो, दोनों को सोलहवें स्वर्ग माना है। इसमें सम्यक दर्शन की अपेक्षा से विशेषता समझ में आती है, सम्यक दर्शन न होने से बारहवें स्वर्ग तक, सम्यक दर्शन हो जाए सोलहवें स्वर्ग तक, चाहे द्रव्य अनुवृत्ति हो चाहे भाव अनुवृत्ति हो, सोलहवें स्वर्ग तक जा सकेंगे। अब भाव अनुवृत्ति, यहाँ भाव अनुवृत्ति पंचम गुणस्थान की चर्चा करेंगे ना, पहले सनन की अपेक्षा से भाव अनुवृत्ति पांचवें गुणस्थान में मरण करता है। पहला सनन है श्रावक या त्रेंच जीव है, पांचवा गुणस्थान है मरण का, पांचवें गुणस्थान में मरण कर कहाँ तक जा रहा है, एक से सोलह स्वर्ग तक, चौथे गुणस्थान में मरण करके भी एक से सोलह स्वर्ग तक, पांचवें गुणस्थान में मरण करके भी एक से सोलहवें स्वर्ग तक जा रहे, किंतु सम्यक दर्शन से रहित हो तो मरण के दो गुणस्थान रहते हैं, पहला और दूसरा, तो भवनत्रिक से लेकर बारहवें स्वर्ग तक जाते हैं। द्रव्य अनुवृत्ति दूसरे सहनन वाले जीव कहां से कहां तक, चौथे गुणस्थान में मरण करते हैं तो एक से सोलह तक, ठीक है, सहनन है ना, दूसरा सहनन है इसलिए सोलहवें तक जाना संभव है। और द्रव्य अनुवृत्ति दूसरे सहनन से पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करते हैं तो भवनत्रिक से बारहवें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। भाव अनुवृत्ति दूसरे सहनन वाले पांचवें गुणस्थान में मरण करते हैं तो पहले स्वर्ग से सोलहवें स्वर्ग तक, इसमें भी अंतर नहीं आया, पहले से सोलह ऊपर भी था, चौथे गुणस्थान में मरण करने से द्रव्यलिंग था और यहाँ पर भावलिंग है, फिर भी सोलह स्वर्ग तक जन्म ले रहे हैं। द्रव्य अनुवृत्ति क्या आया, तीसरे सनन से भाव हो गए ना, भाव अनुवृत्ति का हो गया, 35 नंबर का, द्रव्य अनुवृत्ति तीसरे सनन वाला जीव चौथे गुणस्थान में मरण करके स्वर्ग पहले से सोलहवें तक जा सकते हैं, ये भी सनन के कारण से, सनन भी है और सम्यक दर्शन भी है, इसलिए द्रव्य अनुवृत्ति तीसरे सनन वाले जीव पहले दूसरे में मरण करके भवनत्रिक से बारहवें स्वर्ग तक जाते हैं। बारहवें स्वर्ग तक मतलब ये है, सनन होकर के भी यहाँ पर सम्यक दर्शन न होने के कारण बारहवें स्वर्ग तक जा रहे हैं। 37 नंबर, द्रव्य अनुवृत्ति नहीं, भाव अनुवृत्ति तीसरे सनन वाले जीव पांचवें गुणस्थान में मरण कर स्वर्ग पहले से सोलहवें तक जा सकते, ये तीसरा सनन है इसलिए सोलहवें तक जा रहे हैं। 38 नंबर, द्रव्य अनुवृत्ति चौथे सनन वाले जीव चौथे गुणस्थान में मरण करेंगे तो स्वर्ग पहले से 16वें तक जा सकते हैं। द्रव्य अनुवृत्ति चौथे शरण वाले जीव प्रथम दूसरे गुणस्थान में, प्रथम व द्वितीय गुणस्थान में मरण करके भवनत्रिक से 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। भाव अनुवृत्ति चौथे गुणस्थान वाले जीव, हाँ चौथे शरण वाले जीव पांचवें गुणस्थान में मरण कर पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक जन्म लेते। यहाँ भी 16 हो गया, अब 16 खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि चौथे शरण तक ही 16वें स्वर्ग तक जाना संभव है। अर्थ ये हुआ, मनुष्य यदि श्रावक है तो 16वें स्वर्ग से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? दिगंबर अवस्था चाहिए, द्रव्य व्रत चाहिए। और दिगंबर अवस्था भी हो और द्रव्यलिंग भी ना हो तो? दिगंबर अवस्था हो और द्रव्यलिंग भी ना हो तो हाँ? नहीं, चारों गति में जा सकता है वो, चारों गति। कषाय मंद हो तो देव गति भी मिलेगी, किंतु भावव्रत और द्रव्यव्रत इन दोनों का घात करें तो तिरंचायु का बंध हो सकता है। घात करे तो, पर तिरंचायु का ही बंध होता है, एकांत से नहीं। कषाय मंद और तीव्रता पर भी डिपेंड करेगा, जिस प्रकार की लेशा कषाय होगी उसके अनुरूप वह जाएगा। द्रव्यानुवृत्ति अभवी को तो गुणस्थान पहला ही रहेगा, प्रथम रहेगा। अब सवनन कौन सा? तो नवग्रहिक तक जा सकता है, पहला सवनन हो, दूसरा सवनन हो, तीसरा सवनन हो, अभवी हो, पहले गुणस्थान में मरण होता ही है, तो वो नवग्रहिक तक जा सकता है, नौ ग्रविक तक। वर्तमान की अपेक्षा तो सहनन तो चौथा ही रहेगा अधिक से अधिक। हाँ, यही उदाहरण है ना, यही कथन, ये काल की अपेक्षा से भी कथन है, काल की अपेक्षा से भी घटित किया जा सकता है आज के हिसाब से। ये तो त्रैकालिक कथन है, हाँ उदाहरण कथा रूप में, कथा रूप में कोई ऐसा उदाहरण पंच काल की अपेक्षा से नहीं कहते, काल की अपेक्षा से कथन नहीं मिलेगा। 40वां भाव अनुवृत्ति तिरंच व श्रावक, सवनन चौथा, गुणस्थान पांचवा, पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। नरक तो जाएंगे ही नहीं, नरक गति सब सबका ज्ञाप। द्रव्य अनुवृत्ति भी नहीं जाएगा और भाव अनुवृत्ति भी नहीं जाएगा। हाँ, द्रव्य अनुवृत्तों का भी इतना महत्व है कि वह नरक तीन गति से बचाता है, देव गति में ही ले जाता है। द्रव्य व्रत का मतलब द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग का मतलब द्रव्यव्रत। द्रव्य अनुवृत्त में प्रतिमा, प्रतिमा संबंधी बाह्याचर, पांच अनुवृत्त, तीन गुणवृत्त, चार शिक्षा वृत्ति है ना, ये बाह्याचरण कहलाया। हाँ, पानी छान कर पीना, शुद्ध भोजन करना, ये सब अगर करने लग जाए तो नियम से देवगति। जीव दया का पालन, पाप कम हो रहा है, जीव दया का पालन हो रहा है, जीव कम मर रहे हैं, हिंसा कम हो रही तो पुण्य लग रहा है, इससे देवगति में जाता है जीव। देखो, जीव को चाहिए तो देवगति, नरक नहीं चाहिए, त्रेंच नहीं चाहिए। लेकिन पानी छान करके पियो कहने से ये नहीं होता महाराज हमसे। चाहता स्वर्ग और करता नरक का कार्य, कार्य तो नरक का और मिले स्वर्ग, ये कैसे होगा? और कुछ नहीं करते हैं तो जाना ही है। द्रव्यलिंग को तो कम से कम गारंटी करना चाहिए, भावलिंग हो ना हो, द्रव्यलिंग ही भावलिंग का कारण बनता है। द्रव्यलिंग लेकर के रखेंगे तो कभी न कभी भावलिंग भी किसी क्षण में हो सकता है। भावलिंग के साथ मरण करने के लिए तो द्रव्यलिंग चाहिए ही, चारित्र आना ही चाहिए। सिर्फ ज्ञान रहने से क्या मतलब? ज्ञान क्या किया? चर्चा करने के लिए है क्या केवल? ज्ञान भी आचरण के लिए ही होता है ना। सिर्फ चर्चा करने से क्या फायदा? भोजन की केवल चर्चा करने के लिए भोजन है क्या? खाने के लिए नहीं है वो? ऐसा खूब चर्चा करना, जलेबी, लाडू, रोटी, पानी, सबकी चर्चा करते ही बैठना, खाना नहीं। तो भोजन संबंधी ज्ञान को बढ़ाने से क्या पेट भर जाएगा? भोजन पदार्थ संबंधी ज्ञान बहुत बढ़ गया, ऐसा अशुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है, ये इतने टेस्ट रहता है, इतना नहीं। कौन सा? 41वां, 41। द्रव्य अनुवृत्ति, पांचवां सहन वाला जीव चौथे गुणस्थान में मरण करे तो पहले स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक जाता है। बराबर है, पांचवा सहन है, 12वें स्वर्ग तक जा रहा है। द्रव्य अनुवृत्ति, पांचवा सहन वाला जीव यदि पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करता है तो भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक जाता है। भाव अनुवृत्ति, पांचवा सहन वाला जीव पांचवें गुणस्थान में मरण करे तो स्वर्ग पहले से लेकर 12वें, ये प्रतिमाधारी है, ये पांचवें गुणस्थान में मरण कर रहा है, इसको बाल पंडित मरण हो रहा है। कौन सा मरण? बाल पंडित मरण, पांचवें गुणस्थान में मरण कर रहा है। और सोहनन पांचवा है, जहाँ कहाँ तक जा रहा है? पहले से लेकर 12वें स्वर्ग तक जा रहा है, ये 16वें तक नहीं जा रहा है। क्यों? सोहनन नहीं है इसलिए। आगे 44वां है ना। द्रव्य अनुवृत्ति, छठा सहन वाला जीव चौथे गुणस्थान में मरण करेगा तो पहले से 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। द्रव्य अनुवृत्ति जीव श्रावक या तिर्यंच छठे सहन के साथ पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करेगा तो भवनत्रिक से लेकर 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सहन छठा है। भाव अनुवृत्ति जीव छठे सहन वाला पांचवें गुणस्थान में मरण करेगा तो पहले से 8वें स्वर्ग तक जाएगा, ये भवनत्रिक से बचेगा। विशेषार्थ में देखें, द्रव्य अनुवृत्ति और भाव अनुवृत्ति श्रावक व तिर्यंच जीव तथा श्राविका और तिर्यंचनी जीव दोनों लेना चाहिए ना। श्रावक लिया है तो श्राविका नहीं छूटेगी क्या? दोनों को लेकर के कथन करना चाहिए। द्रव्य अनुवृत्ति और भाव अनुवृत्ति श्रावक व तिर्यंच जीव तथा श्राविका और तिर्यंचनी, इन दोनों को भी लेना चाहिए। तथा द्रव्य व्रत युक्त एवं भाव व्रत युक्त उपचार महाव्रत धारिणी आरिका, ये जीव तिर्यंच गति, मनुष्य गति और नरक गति में जन्म नहीं लेते, क्योंकि द्रव्य व्रति है या तो भाव व्रति है, इसलिए तीन गति से बचेंगे। द्रव्य व्रति भवनत्रिक में और वैमानिक देवों में जन्म ले सकते हैं। द्रव्यव्रति क्या कहा? द्रव्यव्रति भवनत्रिक में और वैमानिक देवों में जन्म ले सकते हैं, किंतु भावव्रति केवल वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं। चौथे गुणस्थान के अविरत सम्यक दृष्टि जीव और चौथे गुणस्थान के द्रव्य अनुवृत्ति, चौथे गुणस्थान के द्रव्य उपचार महाव्रत धारिणी आरिकाएं भवनत्रिक में जन्म नहीं लेती। भवनत्रिक में जन्म नहीं लेती। पहले दूसरे गुणस्थान के द्रव्यवृत्ति भवनत्रिक और वैमानिक दोनों स्थानों में जन्म ले सकते हैं, दोनों स्थानों में। नहीं, हाँ है ना, गुणस्थान एक दो यानी सम्यक तो रहित हैं, इसलिए वैमानिक भी बन सकते हैं और भवनत्रिक में भी जा सकते हैं। मतलब हाँ नहीं जाते, नीचे देखो श्राविका व त्रियंचनी कथन, ये अलग से क्यों किया? हाँ ये ठीक, सहन की अपेक्षा से अलग से कथन करना आवश्यक है। तिर्यंचनी को कर्म भूमि की तिर्यंचनी को कितने सहन मिलते हैं? लास्ट के तीन, और कर्म भूमि के श्राविका को कर्म भूमि के स्त्री पर्याय में कितने सहन मिलते हैं? अंतिम तीन, ये इसलिए अलग से कथन किया। यहाँ पर पहले सनन से कथन नहीं चलेगा, ऊपर पहले सनन से कथन हुआ, नीचे चौथे सनन से कथन प्रारंभ होता है। द्रव्य अनुवृत्ति चौथे सनन वाली श्राविका और त्रियंचनी जीव गुणस्थान चौथे में मरण कर पहले स्वर्ग से, बराबर है, चौथा सनन है इसलिए पहले स्वर्ग से सोलहवें स्वर्ग तक, वही द्रव्य अनुवृत्ति श्राविका और त्रियंचनी जीव पहले गुणस्थान चौथे सनन के साथ पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करते हैं तो भवनत्रिक से बारहवें स्वर्ग तक जाते हैं। भाव अनुवृत्ति श्राविका और त्रियंचनी जीव चौथे सनन के साथ पांचवें गुणस्थान में मरण करके स्वर्ग पहले से सोलहवें तक जा सकते हैं, बराबर है। पचासवा, द्रव्य अनुवृत्ति पांचवा सहन वाला जीव श्राविका या त्रियंचनी जीव चौथे गुणस्थान में मरण करके स्वर्ग पहले से लेकर बारहवीं तक जा सकते हैं, वही पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करेंगे तो भवनत्रिक से लेकर बारहवीं स्वर्ग तक जा सकते हैं। यदि भाववृत्ति हो तो सनन पांचवा, भाववृत्ति हो तो पहले से बारहवीं तक जा सकते हैं। द्रव्य अनुवृत्ति छठे सनन वाला जीव चौथे गुणस्थान में मरण करे तो एक से आठवें गुणस्थान स्वर्ग तक जा सकते हैं, पहले स्वर्ग से आठवें स्वर्ग तक। द्रव्य अनुवृत्ति जीव पहले छठा सनन है, पहले दूसरे गुणस्थान में मरण करे तो भवनत्रिक से लेकर आठवीं स्वर्ग तक। भाव अनुवृत्ति छठे सनन वाले जीव पांचवे सनन गुणस्थान में मरण करेंगे तो पहले स्वर्ग से आठवीं स्वर्ग तक जा सकते। सरल है कथन। कर्म भूमि के स्त्री और तिर्यंचनी में चौथा पांचवा छठा ये तीन ही सनन मात्र प्राप्त होते हैं, ये विशेष। उपचार महावृत्ति आरिका कथन। द्रव्य उपचार महावृत्ति आरिका ऊपर जैसे कहा है वैसा ही सनन चौथे से लेकर छठे तक सनन तीन सनन रहेंगे। इन तीनों सनन के साथ जैसा ऊपर कथन किया है वैसा सारा कथन जैसा का तैसा रहेगा। ये द्रव्य उपचार हो तो द्रव्य के अनुसार समझना है, भाव उपचार हो तो भाव उपचार महावृतधारी हो तो भाव के समान समझना, ये कथन हुआ। हाँ 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 त्रिपर्याय छेद पन वहां भी देना चाहिए, ऊपर आरिका को ही दे सकते हैं ऐसा नहीं, अनुवृत्ति को दे सकते हैं। हाँ 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 तो उसके भाव कितने रहते हैं तो उसमें बीच में तो स्त्री बनता ही नहीं जीव, देव मनुष्य करके चला जाता है। और क्योंकि सम्यक दर्शन भी सुरक्षित है, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा। त्रि पर्याय छेद का क्या अर्थ है? कभी जीव स्त्री पर्याय में जन्म ही न ले, कभी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। क्या करने से हो सकता है? सम्यक दर्शन के साथ साथ अनुवृत धारण करने से होता है। केवल सम्यक दर्शन ही धारण करेंगे तो स्त्री पर्याय छेद तो नहीं होगा, सम्यक दर्शन से च्युत हो गया तो पुनः स्त्री पर्याय में भी जीव आ सकता है। किंतु अनुवृत्ति बनकर के सम्यक दृष्टि बनकर अनुवृत्ति बनकर एक बार पंचम गुण स्थान में मरण करेंगे दो प्रतिमा का पालन करके, कम से कम दो प्रतिमा, तो जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? तो उसके कम से कम तीन भव, अधिक से अधिक आठ ही भव बचते हैं। प्रतिमाधारी बनकर मरण करने से कम तीन भव, ज्यादा से ज्यादा आठ भव बचते हैं। इसलिए स्त्री पर्याय में जन्म लेने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, आठ भव तक भी यदि वह संसार में रहता है तो सम्यक दृष्टि बनकर के ही रहता है। आठ भव अगर बचे हैं तो सम्यक दृष्टि बनकर ही रहता है, इसलिए स्त्री पर्याय में जन्म लेने का अवसर ही नहीं। सम्यक दर्शन यदि साथ में है तो स्त्री पर्याय में जाएगा नहीं, और अनुवृत्ति के आठ भव ही बचते हैं, नियम है आठ भव ही बचेंगे, कम से कम तीन और अधिक से अधिक आठ भव में मोक्ष जाने की गारंटी है। अच्छा, जिसको पुरुष पर्याय है और उसने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, सम्यक तो का पालन नहीं किया या अनुव्रत आदि भी नहीं लिया, तो वो क्या स्त्री पर्याय में नहीं जा सकता? वो जब कभी भी ऑलवेज वेलकम स्त्री पर्याय में जाने के लिए मार्ग खुला है, पुरुष स्त्री बन सकता है, किंतु स्त्री पुरुष पुरुष ही बन सकती है, स्त्री नहीं बन सकती। स्त्री है, स्त्री नहीं बन सकेगी अब भविष्य में, इसके लिए क्या करे? पांचवा गुणस्थान प्राप्त करे, दूसरी प्रतिमा का कम से कम पालन करे, प्रतिमाधारी बने, प्रतिमाओं के साथ मरण करे, पंचम गुणस्थान में मरण करे, तो आठ भव ही बचेंगे, ये गारंटी। इसी को कहते हैं स्त्री पर्याय छेद। आरिका भी ले लो, ये कोई भी ले लो, अनुवृत में भी है, आरिका भी अनुवृत्ति तो है। होकर भी दोनों के अनुवृत ही होते हैं, पालन तो अनुवृत का ही हो रहा है। आरिका को सिर्फ प्रतिमाएं नहीं होती, इसलिए उनको उपचार महाव्रत धारिणी कहा है। महाव्रत दिए जाते हैं, परंतु पालन तो पंचम गुणस्थान में ही होता है ना, और पंचम गुणस्थान सयमा संयम गुणस्थान है, वहां असयम का भी संबंध है, परिग्रह का भी संबंध आ गया, तो परिग्रह के साथ कभी भी महाव्रत नहीं होते, अनुव्रत ही होते हैं। वो उपचार महाव्रत होकर के भी अनुव्रत की कोटि में ही माने जाते हैं, प्रतिमा की कोटि में नहीं माने जाते। प्रतिमा अगर आरिका को प्रतिमा दी जाए तो फिर उत्कृष्ट श्राविका की कोटि में आएगी, आरिका नहीं कहेंगे फिर उनको, छुल्लिका। हाँ, मरण पांचवें में ही होना चाहिए, एक बार हासिल करो मरण को पंचम गुणस्थान में, फिर देख लो क्या है आगे। स्त्री पर्याय है ही नहीं, अनंत काल तक स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। एक बार हासिल करो, तैयार हो जाओ दूसरी प्रतिमा के लिए, और हो रहे हैं, बहुत अच्छा लक्षण है ये। पंचम गुणस्थान में मरण होगा और आठ भव में मोक्ष जाएगा ये जीव। तीन से आठ कम से कम तीन, तो उत्कृष्ट समाधि मरण होगा ना, तीन ही भोग बचेंगे। समाधि मरण भी उत्कृष्ट मध्यम और जगन है ना पंचम गुणस्थान में, तो उसको लेकर के भोग बचते हैं। पांचवे में ही मरण हुआ लेकिन आठ बच गए, तो आठ बच गए, जगन हो गया, जगन से लेकर मरण, मध्यम हो गया, तो मध्यम आठ के बीच में जाएंगे, पांच भव लेकर के जाएंगे या चार भव लेकर के जाएंगे, मध्यम हो गया। और यदि संलेखना उत्कृष्ट हो जाती है तो तीन ही बचेंगे। ये हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है। जिनवाणी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से मिश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरुमा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।